समाचार प्रादेशिक समाचार के साथ में तादु याजो। अरुणाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री तथा राज्य वित्त मंत्री चाउना मेन ने आज राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 2.08% घाटे का बजट पेश किया। श्री मेन ने विधानसभा को सूचित किया कि 2016 से अरुणाचल प्रदेश में सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में लगभग 135% की वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में 105% की वृद्धि और राज्य के बजट में 186% का विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में राज्य की अनुमानित कुल प्राप्तियां 35,840.79 करोड़ रुपये हैं, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 20.85% से अधिक है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का बजट विकास के तीन महत्वपूर्ण स्तंभों, स्वस्थ मानव संसाधन, मजबूत बुनियादी ढांचा और जीवंत अर्थव्यवस्था पर केंद्रित है। अरुणाचल की संसाधन स्थिति पर बोलते हुए श्री मेन ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में राज्य के लिए केंद्र करों का हिस्सा 19% से अधिक बढ़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि 2024-25 के बजट अनुमान के लिए राज्य के अपने संसाधन 4,016.71 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17.35% अधिक है। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश सरकार इस वित्तीय वर्ष में राज्य के अपने संसाधनों को बढ़ाने पर अधिक काम करेगी और ध्यान केंद्रित करेगी। सरकार ने कैंसर की दवाओं की सामर्थ्य में सुधारने के लिए इन दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल संसद में प्रस्तावित केंद्रीय बजट 2024-25 में 3 अतिरिक्त कैंसर दवाओं को सीमा शुल्क से छूट देने की घोषणा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस फैसले से देश के 27 लाख कैंसर रोगियों को लाभ होगा। मंत्रालय ने आगे बताया कि वित्त मंत्री ने एक्सरे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स पर सीमा शुल्क दरों में भी संशोधन किया है। इन संशोधित दरों से कम लागत पर घटक उपलब्धों को बढ़ाकर एक्सरे मशीन उद्योग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। इस बीच यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने केंद्रीय बजट की सराहना की और कहा कि उद्घाटन बजट भारत में व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों के साथ घरेलू उपभोक्ताओं और विदेशी निवेशकों दोनों का समर्थन करता है। फोरम ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारत सरकार को 2024-25 के लिए एक सराहनीय केंद्रीय बजट पेश करने के लिए बधाई दी। सरकार ने आज स्पष्ट किया कि मेडिकल परीक्षा को लेकर विवादों के बीच फिलहाल नीट यूजी को बंद करने और राज्यभर प्रवेश परीक्षाएं बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। शिक्षा राज्य मंत्री डॉ सुकांत मजुमदार ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में यह जानकारी दी। यूजीसी नेट परीक्षा के बारे में उन्होंने बताया कि इस साल जून में आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी और अब यह निर्णय लिया गया है कि इसे 21 अगस्त से 4 सितंबर 2024 के बीच कम्प्यूटर आधारित टेस्ट मोड में आयोजित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय लंबित मामलों को निपटाने और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए 29 जुलाई से 3 अगस्त 2024 तक विशेष लोक अदालत का आयोजन करेगा। यह पहल सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75वें वर्ष में मील का पत्थर है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने उन नागरिकों से इस पहल से लाभ उठाने की अपील की है जिनके मामले शीर्ष अदालत में लंबित हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार फर्जी और भ्रामक सूचनाओं के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए हर संभव कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे देश के लोकतंत्र को कमजोर करने और समाज में दरार पैदा करने की क्षमता है। उन्होंने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह बात कही। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार के पास विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों पर फर्जी खबरों से निपटने के लिए वैधानिक और संस्थागत तंत्र है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से संबंधित फर्जी खबरों का मुकाबला करने के लिए नवंबर 2019 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रेस सूचना ब्यूरो के तहत एक फैक्ट चेक यूनिट की स्थापना की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि 2021 से 2024 तक भारतीय प्रेस परिषद ने महाराष्ट्र राज्य के संबंध में फर्जी खबरों की 5 शिकायतों का निपटारा किया है। भारत दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है और वैश्विक दूध उत्पादन में इसका योगदान 25% है। देश में दूध उत्पादन पिछले 9 वर्षों से लगभग 6% की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है, जबकि विश्व दूध उत्पादन 2.1% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि देश में दूध की खरीद मूल्य और बिक्री मूल्य सरकारी और निजी डेयरियों द्वारा उनकी उत्पादन लागत और बाजार की ताकतों के आधार पर तय किए जाते हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
This is Akashvani Itanagar, the news read by Prem Sharma. Arunachal Pradesh Deputy Chief Minister Chawna Man, who is also the State Finance Minister, presented a 2.08% deficit budget for the financial year 2024-25 in the State Assembly today. Mr. Min informed the Assembly that since 2016, Arunachal Pradesh has witnessed about 135% increase in the gross state domestic product, 105% rise in the per capita income, and 186% expansion in the state budget. He said this financial year the projected total receipts of the state is ₹35,840.79 crore, which is 20.85% higher than the previous financial year. He said the state budget focuses on three important pillars of development: healthy human resources, a robust infrastructure, and vibrant economy. Speaking on the resource position of Arunachal, Mr. Main said that the share of central taxes for the state has increased by over 19% this financial year and thanked the union government for the enhancement. He also added the state's own resource for the budget estimate of 2024-25 is estimated to be ₹4,016.71 crore, which is 17.35% more than the previous year. He said that Arunachal Pradesh government will work and focus more on increasing the state's own resources in this financial year. Government has exempted customs duties on cancer medicines to improve the affordability of these drugs. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman announced the exemption of three additional cancer medicines from customs duty in the proposed Union Budget 2024-25 in the Parliament yesterday. The Union Health Ministry informed that 27 lakh cancer patients in the country will benefit from this decision. The Ministry further informed the Finance Minister has also revised the custom duty rates on X-ray tubes and flat panel detectors. These revised rates are expected to positively impact the X-ray machine industry by enhancing component availability at lower cost. Meanwhile, the U.S.-India Strategic Partnership Forum has commended Union Budget and said the inaugural budget supports both consumers at home and foreign investors with steps to enhance the ease of doing business in India. The budget 2024 has also been warmly embraced by the Indian diaspora for its commendable emphasis on economic growth and innovation. In a significant move to clear pending cases and promote amicable settlements, the Supreme Court will organize a special Lok Adalat from 29th July to 3rd August 2024. This initiative marks a milestone in the Supreme Court's 75th year of establishment. Chief Justice of India D.Y. Chandrachur has appealed to citizens whose cases are pending before the Apex Court to take benefit from this initiative. The government today clarified that there is no proposal to discontinue NEET UG and restore state-wise entrance examinations at present amid controversies over the physical examination. This was stated by Minister of State for Education, Dr. Sukanta Mazumdar, in a written reply in the Rajya Sabha. On UGC NET examination, he informed that the examination held in June this year was cancelled and now it has been decided that it will be conducted between 21st August and 4th September 2024 in computer-based test mode. Information and Broadcasting Minister Ashwani Vaishnaw said the government is committed to taking all possible actions to control the spread of fake news and misleading information which has the potential to weaken the country's democracy and create fissures in society. He said this in a written reply in the Lok Sabha today. Mr. Vaishnaw said the government has authority and institutional mechanisms in place to address fake news on various media platforms. He said the fact-check unit has been set up under the Press Information Bureau, Ministry of Information and Broadcasting in November 2019 to counter fake news relating to the central government. The district administration, in collaboration with Women and Child Development and the Health Department, Papumpara district, today organized Beti Jan Mahotsav under BBP scheme at Community Health Center, Sagali. While addressing the gathering, Deputy Director, District ICDS Cell, Papumpare, highlighted the various programs under the scheme and its benefits. That's all in the news bulletin. Namaskar.